शहर की ओ, जब चले शहर की ओ।
नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि जोशी
और मैं नरेंद्र तिवारी
एक बार फिर हाजिर हैं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है जब चले शहर की ओर।
अंजलि एक बात बताओ।
पूछो नरेंद्र।
अंजलि, जिंदगी का लुत्फ उठाने के लिए अपने जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध होना कितना जरूरी है?
देखो, वैसे तो जिंदगी अकेले भी कट सकती है, पर अगर जीवन साथी हो और वो अच्छा दोस्त हो तो मजा ही कुछ और होता है।
तो फिर पति पत्नी को कोशिश करनी चाहिए कि उनके रिश्ते में कोई तनाव ना आए।
नरेन, हमने अपने कार्यक्रम में पहले भी इस बात पर चर्चा की थी और हमारे श्रोताओं, खासकर प्रवासी श्रोताओं से पता चला था कि पति और पत्नी के बीच तनाव की वजह उनकी वास्तविक दूरियां नहीं, उन दोनों के बीच कम होती बातचीत है।
यानी भले ही पति पत्नी एक दूसरे से लंबे समय तक दूर रहें, लेकिन उसके बावजूद पति पत्नी को आपस में बातें करते रहना और एक दूसरे से अपने सुख दुख बांटते रहना बहुत जरूरी है। इस तरह वो अपने बीच तनाव को बढ़ने से रोक सकते हैं।
हाँ नरेन, और पति पत्नी के बीच बढ़ने वाली दूरी को कम करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आप एक दूसरे को चिट्ठी लिख सकते हैं या फिर फोन पर बातें कर सकते हैं।
दोस्तों, हम इस विषय पर और बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर फोर्ड फाउंडेशन और इक्वल एक्सेस के वित्तीय सहयोग से आइडियोसिंक मीडिया कंबाइन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके जरिए हम आपके लिए प्रवास से जुड़ी हर जरूरी जानकारी पहुंचाते आ रहे हैं।
अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप अपना सवाल हमारे नंबर पर SMS कर सकते हैं।
हमारा फोन नंबर है 9197176782।
तो इसी के साथ नरेन, हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं
और सुनाते हैं धारावाहिक शहर की ओर की 29वीं कड़ी।
दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना, चंदर परेशानी की हालत में गजेंद्र के पास पहुंचता है। गजेंद्र उसे अपने होटल के मैनेजर से मिलवाता है, जहां चंदर को फिर से नौकरी मिल जाती है। इधर गाँव में मधु जूस का पहला ऑर्डर पूरा कर लेती है। नीलम दीदी मधु को बचत खाता खोलने की सलाह देती है। सुनते हैं अब आगे की कहानी।
अरे नारायण।
हाँ जी।
वो 3 नंबर का क्या हुआ?
अरे बना रहा हूँ ना।
अच्छा सुन, 2 मसाला डोसा और 1 चाउमीन जल्दी तैयार कर।
अरे कर रहा हूँ ना, यहाँ पर तो सोया सास की बोतल नहीं मिल रही है। फटाफट ऑर्डर ये करो वो करो, दिमाग खराब हो गया। अरे सुनो।
मैं?
अरे तुमसे ही कह रहा हूँ, सुना नहीं देता क्या?
जी।
नाम क्या तुम्हारा?
जी चंदर।
चंदर, वहाँ क्या कर रहे हो?
मैं वो पुदीने की चटनी बना रहा था।
अरे छोड़ो उस पुदीने की चटनी को और यहाँ आओ।
जी आया साहब अभी।
लगता है नए आए हो, इसीलिए तुम्हें बता दूं कि मैं यहाँ का हेड कुक हूँ और नारायण दत्त नाम है मेरा, समझे?
जी साहब।
वैसे तुम्हें चटनी बनाने के लिए बोला किसी ने?
जी वो तो मैं
पता नहीं कैसे कैसे लोग भर्ती कर लेते हैं। अरे तुम्हें कुछ पता भी है? आज फूड इंस्पेक्टर आने वाला है और वो यहाँ पर तुम्हारी चटनी चाटने नहीं बल्कि खाने की जांच करने आ रहा है। अगर खाने में जरा भी गड़बड़ हो गई तो नौकरी चली जाएगी, तुम्हारी भी और मेरी भी, समझे?
जी साहब।
जी साहब, जी साहब, जाओ पुदीने की वो चटनी घिसो जाके, चलो रगड़ो।
चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। कहाँ हुआ बेटे को? कहाँ हुआ?
लाओ दीदी, मैं इसे गोद में ले लेती हूँ, आप आराम करो। मुझे पता है ये चाची की गोदी में घूमना चाहता है। आले लाओ। आहा, देखा चाची की गोदी में आकर कैसे चुप हो गया, शैतान कहीं का।
अरे मीरा, तू ये खाट छोड़ दे, खेतों की बुआई का समय आ गया है और मेरी तबीयत भी तू देख रही है कि ठीक नहीं चल रही है।
जी माँ जी।
पर माँ जी, दीदी अभी काम करना कैसे शुरू कर सकती हैं? कम से कम 1 महीने तो उन्हें आराम करने दो।
देख मधु, तूने ये ज्ञान अपने पास ही रखा कर, मुझे मत सिखाया कर। अगर खेतों में बुआई न हुई तो भूखे मरना पड़ेगा।
लेकिन माँ जी, अभी तो रोशन भी दीदी का दूध पीता है, ऐसे में दीदी रोशन को संभालेंगी या खेतों को?
अरे तो हमने नहीं संभाले क्या? ये चंदर 4 दिन का था, मैंने तो तभी से खाट छोड़ दी थी, अपनी सास को कहने का मौका तक नहीं दिया मैंने। अरे अकेली खेत और चंदर दोनों को संभालती थी। अब तुम दोनों बारी मिलकर खेतों का काम शुरू कर दो, वरना फसल के बिना सर्दियों में खाएंगे क्या?
वो तो सब ठीक है माँ जी, मगर छह महीने तक तो बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही पीना चाहिए और ये माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत जरूरी है।
तेरी यही भाषणबाजी ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। एक बार जो कह दिया सुन लिया कर, समझी?
मैनेजर साहब, आपके रेस्टोरेंट के किचन में तो साफ सफाई काफी अच्छी है।
थैंक यू सर, थैंक यू।
लेकिन अब ये देखना है कि क्या आप खाना भी सचमुच अच्छा बनाते हैं या फिर ये सब दिखावा है।
नहीं सर, खाने की तरफ से भी आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा।
अब ये तो खाना टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा।
नारायण, चंदर।
जी सर।
सर को खाना टेस्ट कराओ।
जी सर।
मैनेजर साहब, आपके खाने में कुछ भारीपन सा महसूस हो रहा है।
नहीं सर, ऐसा तो नहीं होना चाहिए।
सर वो दरअसल क्या है ना, आपने अभी ये पुदीने की चटनी नहीं चखी है। हम इसे खाने के साथ ही परोसते हैं, इससे खाने में स्वाद का स्वाद भी बन जाता है और हाजमा भी बना रहता है।
गुड, वेरी गुड। लाओ जरा ये चटनी भी टेस्ट करा दो।
हाँ सर, ये लीजिए।
भाई सही कहते हो, चटनी तो वाकई काफी टेस्टी है।
धन्यवाद सर।
भाई मैनेजर साहब, आपका खाना हमारी तरफ से पास।
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
अरे धन्यवाद अपने इस कुक का कीजिए जिसने ये चटनी बनाई है।
जी सर।
चलिए अब मैं चलता हूँ।
शाबाश चंदर, तुमने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। आज से तुम असिस्टेंट नहीं बल्कि कुक के तौर पर ही काम करोगे।
सच सर?
और हाँ, तुम्हारी सैलरी भी अब 2000 नहीं पूरे 4000 रुपए होगी।
सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर सर वो आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी।
हाँ हाँ बोलो।
सर वो मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है, अगर मुझे कुछ पैसे एडवांस मिल जाते तो।
ठीक है, 1500 बहुत है।
हाँ हाँ सर, 1500 बहुत है।
नो प्रॉब्लम, मेरा नाम लेकर कैशियर से ले लो।
जी सर।
और हाँ।
जी सर।
अपना अपॉइंटमेंट लेटर भी ले लेना।
जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
अरे दीदी, रोशन तो सो गया।
लगता है चाची की गोद को भी माँ की गोद समझने लगा है। अब चाची इतना प्यार जो करती है। ला, इसे मुझे दे दे।
अच्छा अच्छा अच्छा।
दीदी।
हाँ बोल।
दीदी वो।
अरे क्या बात है, तू इतना परेशान क्यों लग रही है? माँ जी की बात का बुरा मान गई क्या?
नहीं नहीं दीदी, वो बात नहीं है।
तो फिर क्या बात है?
दीदी इनकी अभी तक कोई खबर नहीं आई।
पर तूने तो चिट्ठी भेजी थी।
उसका भी कोई जवाब नहीं आया। पता नहीं कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे। मुझे रह रहे कर बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं दीदी, बहुत डर लग रहा है।
अरे पगली, आ जाएगा। और ये भी तो हो सकता है कि उमेश ने चिट्ठी ही ना दी हो।
हाँ ये भी हो सकता है, पर दीदी।
चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा।
रूप तो इधर ही है।
ओ राजू, चल चल, तेरी चाल है।
अरे मेरी नहीं है, इस गजेंद्र की चाल है। ये पान की बेगम मैंने ही तो डाली है।
अरे चल रहा हूँ ना यार।
गजेंद्र भाई, ऐसे बेमन से खेलना तो छोड़ो ना, बंद करते हैं।
क्या यार गजेंद्र भाई, सब गड़बड़ कर दिया।
अरे खेल तो रहा हूँ यार, ये लो मेरी चाल।
चंदर आजा, तू भी खेलना।
अरे नहीं यार, मैं काफी थका हुआ हूँ और वैसे भी मुझे ताश खेलना नहीं आता।
अरे नहीं आता तो सिखा देंगे, तू आ तो एक बार।
अरे नहीं नहीं, आप लोग खेलो, मेरा मन नहीं है।
ले नंदू, फिर से पत्ते फेंट।
हाँ दे।
अरे मेरे मत बांटना यार, मुझे काम है।
चल हम खेलते हैं।
ये ले तेरे पत्ते।
ये सही है।
ओहो, क्या क्या पत्ते मिले हैं इस बार।
अरे वाह।
चंदर तू यहाँ ऐसे क्यों बैठा है, खेलता क्यों नहीं?
नहीं यार, मेरा मन नहीं है। अच्छा सुन गज्जू।
हाँ।
यार तेरे फोन से कॉल कर लूँ?
हाँ कर ले यार, लेकिन लोकल है ना।
हाँ हाँ यार।
ये ले यार, देख बैलेंस कम है।
ला दे। कल्पना फोन उठाओ, फोन उठाओ कल्पना।
हेलो।
हाँ कल्पना, चंदर बोल रहा हूँ।
हाँ चंदर बोलो।
अरे भाई क्या बात है, इतनी देर क्यों लगा दी फोन उठाने में?
वो रसोई में थी ना, इसलिए आने में टाइम लग गया।
अच्छा सुनो, तुम्हें एक खुशखबरी देनी थी। मुझे लक्ष्मी नगर में एक रेस्टोरेंट में कुक की नौकरी मिल गई है।
सच?
हाँ।
इस बार तुमने पैसों की बात तो साफ कर ली है ना?
अरे सिर्फ पैसों की ही बात नहीं, सारी बातें साफ कर ली हैं। और इस बार सब कुछ लिखित में लिया है मैंने, पेपर पर।
अच्छा पेपर पर।
पहले तो मैनेजर ने मेरी सैलरी 2000 रुपए ही लगाई थी, लेकिन जब मैनेजर ने मेरा काम देखा तो खुश होकर तनख्वाह 4000 रुपए कर दी।
ये तो बहुत अच्छी बात है।
अच्छा सुनो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ।
किस लिए?
अरे भाई तुम्हारे पैसे लौटाने थे ना।
अरे वो नहीं, नहीं रहने दो, बाद में दे देना।
अरे बाद में कैसे, जब लिए हैं तो वापस तो देने ही है ना। मैं कल समय निकाल कर तुम्हारे यहाँ आऊँगा।
ठीक है फिर, आ जाना।
अच्छा रखता हूँ, किसी और के मोबाइल से फोन कर रहा हूँ ना इसलिए।
ठीक है।
हाँ अच्छा। गज्जू ये ले तेरा फोन।
अभी कल्पना वही है ना फोन वाली?
हाँ यार वही है।
अबे तेरा क्या चक्कर चल रहा है उसके साथ, कहीं तू उसे पसंद तो नहीं करने लगा
हा? अरे नहीं यार।
अच्छा एक बात बता, तूने घर पर फोन करके बताया अपनी नई नौकरी के बारे में?
नहीं यार अभी तक तो नहीं बताया।
यार कैसा आदमी है तू, और तूने कभी आज तक अपने घर वालों के बारे में कुछ भी नहीं बताया मुझे। तेरे घर में है कौन कौन?
माँ है, भैजी है, बौजी है, एक छोटी बहन है और मधु है।
मधु? ये मधु कौन है?
मेरी बीवी।
अरे हाँ, अरे गांव में तो तेरी बीवी भी है। बहुत बड़ा शेर है भाई तू यार, कमाल है भाई, गांव में बीवी और यहाँ शहर में किसी और के साथ चक्कर चल रहा है।
अरे नहीं यार मेरा वो मतलब नहीं है।
अबे चंदर तू पागल तो नहीं हो गया? फंस जाएगा भाई फंस जाएगा, ये दो नाव में सवारी करना छोड़ दे। देख कहीं ऐसा ना हो कल को तू ना इधर का रहे ना उधर का।
देख गजेंद्र अब तू मुझे मत बता मुझे क्या करना है और क्या नहीं, और वैसे भी ये मेरा निजी मामला है इसलिए तू जरा।
ये तेरा निजी मामला है ना तो ठीक है भैया, आज के बाद मैं तुझसे इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। अरे दोस्त हूँ तेरा, दोस्त होने के नाते तुझे समझाना मेरा फर्ज था, बस इसलिए तुझसे कहा था।
अरे गज्जू तू तो नाराज हो गया भाई।
अरे छोड़ यार छोड़ जाने दे मुझे।
हे भगवान कैसे समझाऊं गज्जू को।
नरेंद्र सुना तुमने, चंदर को नौकरी मिल गई।
हाँ अंजलि ये तो बहुत अच्छी बात है।
और चंदर ने ये बात पहले कल्पना को बताई, क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसे ये बात पहले अपनी पत्नी को बतानी चाहिए थी?
अंजलि तुम्हारी इस बात से मैं भी सहमत हूँ, अब अगर लोग ऐसा करेंगे तो फिर पति पत्नी के बीच तनाव तो बढ़ेगा ही।
तो क्या हमारे प्रवासी भाई भी शहर जाने के बाद अपनी पत्नियों को ऐसे ही भूल जाते हैं?
अब भाई अंजलि ये तो उनसे पूछने पर ही पता चलेगा।
तो फिर ठीक है आओ पूछते हैं कि जब पति पत्नी लंबे समय तक एक दूसरे से दूर रहते हैं तो वो इस दूरी से कैसे जूझते हैं।
मैं पिछले 25-30 सालों से बॉम्बे में अकेला रहता हूँ। अपने आप को कभी कभी एकदम खाली भी समझता हूँ, कभी घर की यादें आ जाती हैं, इसी तरह से निकाल देते हैं। फिर वो अपनी यादें भुलाने के लिए अपने दोस्तों से हंसी मजाक करके या अपने काम के विषय में सोच करके ऐसे समय निकाल देते हैं।
देखो जीवन साथी ऐसा कुछ नहीं है कि जीवन साथी के बिना आदमी नहीं रह सकता है। मैं इधर 30 साल से अकेला रहता हूँ। सवेरे से शाम कैसा निकलता है ये मुझे मालूम नहीं पड़ता है। हमें कोई भी इस चीज़ का महसूस होता ही नहीं है। अभी बिना फैमिली का आदमी कैसा रहता है ये हमें कुछ भी वह मालूम नहीं पड़ता है। एक है योग साधना करो, आदमी सब कुछ वह भूल जाता है। योग साधना में जितना अपना भक्ति भाव में लगे रहो, सुबह श्याम भगवान का नाम लेते रहो, हर काम उसका अच्छा होएगा।
मैं 15 साल से बम्बई में रहता हूँ और मेरे बच्चे लोग गांव में रहते हैं, क्योंकि अपने पगार के हिसाब से और अपने व्यवस्था के हिसाब से अकेला रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ की नौकरी बम्बई की समस्याएँ हर प्रकार से होती हैं, क्योंकि पगार और खान पान बच्चों के लिए व्यवस्था नहीं होती, इसलिए मैं बम्बई में अकेला रहता हूँ, बच्चे लोग गाँव में रहते हैं। ऐसे करते हैं सुबह 7 बजे ड्यूटी चले जाते हैं, रात को 8-9 बजे आते हैं, अपना खाना पीना बना लेते हैं और दोस्त लोगों के साथ हंसी मजाक से खाना पीना खा के रात निकाल देते हैं, क्योंकि अपना पगार के हिसाब से अपनी व्यवस्था देखनी पड़ती है।
तो अंजलि सुना तुमने, सब लोग एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूर रहकर भी एक दूसरे की फिक्र करते हैं और हमेशा एक दूसरे को याद करते हैं।
बिल्कुल नरेन, और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे दंपत्ति से जो पहले एक दूसरे से अलग रहते थे। पति शहर में था और पत्नी गाँव में। बाद में पति ने अपनी पत्नी को शहर में लाने की व्यवस्था की और आज दोनों साथ रहते हैं और साथ काम करते हैं। लेकिन ये सब कैसे मुमकिन हुआ ये जानते हैं खुद उन्हीं से।
नमस्कार, कुछ विश्वास में आज हमें श्रीमान रामजीलाल जी के साथ, आइए जानते हैं उनसे उनके बारे में। आप अपने गांव से शहर तक के सफर के बारे में बताएं।
मेरा नाम रामजीलाल है, संगम विहार में रहता हूँ। मैं अपने गांव से आज से 5 साल पहले दिल्ली आया था। सबसे पहले मैंने शहर में आकर एक छोटी सी नौकरी ढूंढी जिसमें गुजारा नहीं हुआ। फिर मैंने अपने मन में ये ठान ली कि अपना काम क्यों न किया जाए। फिर मैंने कुछ दिनों के बाद ही कपड़े काम स्टार्ट किया। कपड़े काम करते करते फिर मैंने एक कपड़े की दुकान खोल ली, जिससे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ।
जब आप अकेले शहर आए तो क्या आपकी पत्नी को आपका अकेले शहर आना बुरा लगा?
जब मैं अपने गांव से शहर आया तो मेरी घरवाली बोली कि मैं अकेली नहीं रह सकती। मैंने उससे कहा कि मेरा रहने का ठिकाना ठीक नहीं है, जिससे मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता। मैंने उससे कहा कि मैं आपके पास बार बार फ़ोन करता रहूँगा और आपके पास एक महीने में एक दो बार घूम जाया करूँगा, जिससे मैंने अपनी पत्नी को संतुष्ट किया और वह मेरी बात को मान गई।
आपने किन परिस्थिति में अपनी पत्नी को शहर में लाने का निर्णय किया?
जब मैं पहले किराए पर रहता था तब बीमार रहता था और मैं अपनी दुकान पर जाने में लेट हो जाता था। मैंने अपनी बिजनेस से अपना प्लॉट खरीदा और अब मैंने अपना मकान ले लिया है, जिससे मैंने अपनी पत्नी को शहर में लाने का निर्णय किया और अब काम करने में दोनों का मन सही लगता है। सो वही टाइम से दुकान खोल लेता हूँ और बीमारी में भी मेरी पूरी मदद करती है और मैं दिल्ली में अच्छी तरीके से रह रहा हूँ अपनी पत्नी के साथ।
अक्सर देखा होगा कि घर में कई बार बड़ों और छोटों के बीच छोटी छोटी सी बातों को लेकर नोकझोंक हो जाती है।
हाँ, हो तो जाती है।
और कई बार ये छोटी छोटी नोकझोंक वहाँ कुछ ज्यादा ही बड़ी नजर आने लगती है, जहाँ रिश्ता सास और बहू का आ जाता है।
भाई, इसके लिए तो हमें उनको बुलाना पड़ेगा।
उनको?
अरे भाई, वही जो समय के साथ चलते हैं, जिन्होंने पुराना समय तो देखा ही है लेकिन वो आज के समय के लोगों की सोच से भी पूरी तरह वाकिफ हैं।
कहीं तुम भैजी की?
सही पहचाना अंजलि, मैं भैजी की ही बात कर रहा हूँ।
तो देर किस बात की है, बुलाते हैं भैजी को।
मैं हूँ भैया भाई सब, मुझसे करो सवाल, बात हो छोटी बड़ी हो या फिर हल देता हूँ निकाल, बात करता हूँ लाख पते की, पूछो कोई सवाल, क्योंकि मैं हूँ भैजी लाल, मैं हूँ भैजी लाल।
नमस्कार भैजी।
नमस्कार नमस्कार, कहो भाई कैसे याद किया?
भैजी मैं बताती हूँ, लेकिन पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए।
हाँ हाँ, पूछो अंजलि।
भैजी आपकी माता जी का हमारी भौजी यानी कि आपकी पत्नी के प्रति कैसा व्यवहार था?
दोनों के बीच बहुत ही अच्छा व्यवहार था, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझती थी।
क्या कभी उनकी सास यानी कि आपकी माता जी भौजी पर गुस्सा करती थी?
करती तो थी, लेकिन कभी कभी जब तुम्हारी भौजी से कोई गलती हो जाती थी तब उनको गुस्सा आता था, लेकिन वैसा गुस्सा तो वो हम पर भी करती थी। और ये बात तुम्हारी भौजी अच्छी तरह समझती थी, उन्होंने कभी इस बारे में शिकायत नहीं की।
और कभी भौजी को उन पर गुस्सा आया हो तो?
कभी ऐसी बात हुई नहीं कि वो उन पर गुस्सा करें, क्योंकि उसे पता था कि हमारी माता जी उनसे एक पीढ़ी पुरानी है, तो ये तो जाहिर सी बात थी कि उनके विचार भी थोड़े पुराने तो होंगे ही। अब उसे कुछ ऐसा करना होता जो मेरी माता जी की नजरों में नया था, तो वो उस नए काम के फायदे 4 दिन पहले से ही हमारी माता जी को गिनवाना शुरू कर देती थी।
फिर
क्या, 4 दिन बाद स्वयं ही माता जी कहती कि जब इस काम में इतना फायदा है तो तू क्यों नहीं कर लेती, और इस तरह दोनों खुश।
लेकिन भैजी, अगर आपकी माता जी की कोई बात भौजी को पसंद नहीं आती थी तो क्या उन्हें फिर भी उनकी बात माननी पड़ती थी?
भाई देखो, एक बात तो साफ है, बड़े बुजुर्ग कभी भी अपने परिवार का बुरा नहीं चाहते, वो सिर्फ हमारी माताजी ही क्यों, कई बार तुम्हारे भौजी को हमारे पिताजी की भी कुछ बातें ऐसी थीं जो पसंद नहीं आती थीं।
तो फिर वो क्या करती थीं?
वो हमेशा पिताजी की बातों को मुझे बता देती थीं, और पिताजी को मनाना समझाना मेरा काम, और माताजी को समझाने में तो वो माहिर हो चुकी थी।
लेकिन भैजी, कई बार ऐसा भी होता है कि घर के बड़े छोटों की बात समझना ही नहीं चाहते, और वो भी सिर्फ अपने अहम की वजह से, और तो और वो घर के सदस्यों में भेदभाव भी करने लगते हैं।
अंजलि, यहाँ भेदभाव से तुम्हारा मतलब किससे है? अगर सिर्फ इस बात से है कि तुमने किसी काम को करने के लिए परिवार के किसी बड़े सदस्य से कहा और उन्होंने मना कर दिया, तुमने उन्हें समझाया और उन्होंने फिर भी मना कर दिया, और तुम्हें लगा जैसे कि तुमसे भेदभाव हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो भाई ये गलत बात है। इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे समझाने में कोई कमी रह गई थी। लेकिन अगर घर के बड़े जैसे कि सास को ले लो, वो आपकी बात को समझना ही नहीं चाहती और आपसे उसके लिए मारपीट करती हैं, आपको खाना नहीं देती या फिर आपको घर से बाहर निकाल देती है, तो हाँ, आप इसे भेदभाव या अत्याचार कह सकते हैं।
इसका मतलब है जी, अगर लोग आपस में बातचीत करें, छोटे बड़ों को अपनी बातें सही ढंग से समझाएं और बड़ों की बातों को सही ढंग से समझें तो घर में शांति का माहौल बन सकता है।
बिल्कुल भाई, ये जिंदगी है, इसे आप चाहें तो लड़ते झगड़ते गुजार दीजिए या फिर समझदारी से हंसते खेलते, ये सब तो आप पर निर्भर करता है।
दरअसल भैजी हमारा आज का सवाल ही ये था कि घर में शांति बनाए रखने के लिए बड़ों को छोटों के साथ और छोटों को बड़ों के साथ किस तरह से बातचीत करनी चाहिए।
ओहो।
और मुझे लगता है दोस्तों भैजी की बातों से आपको इस सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा।
दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपनी शादी को कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए दो अधिनियम बनाए गए हैं। पहला है हिंदू विवाह अधिनियम 1955
और दूसरा विशेष विवाह अधिनियम 1954। तो दोस्तों हिंदू विवाह अधिनियम 1955 तब लागू होता है जब लड़का और लड़की दोनों हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन हो।
जबकि विशेष विवाह अधिनियम 1954 तब लागू होता है जब लड़का और लड़की दोनों अलग अलग धर्म से हों या फिर ईसाई, मुसलमान, पारसी या यहूदी हों। अब आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि शादी रजिस्टर्ड करवाने का फायदा क्या है। भाई पहला फायदा तो ये है कि आपको आपकी शादी का कानूनी तौर पर सबूत मिल जाता है और फिर आपकी शादी को कोई भी नकार नहीं सकता।
दूसरा अगर पति पत्नी भारत से बाहर यात्रा पर जाना चाहते हैं तो उस समय आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है।
और मान लीजिए कि आपने शादी घर वालों के खिलाफ की है लेकिन अगर आप अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आपकी शादी को कानूनी तौर पर स्वीकृति मिल जाती है और आपके घर वाले आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते।
इसके अलावा अगर शादी के बाद किसी कारणवश आप एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं तो उस सूरत में भी अगर शादी रजिस्टर्ड है तो कानूनी कार्यवाही आसान हो जाती है।
तो अगर आपने अपनी शादी अभी तक रजिस्टर्ड नहीं करवाई है तो कोई बात नहीं, आप ये पंजीकरण कभी भी करवा सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी कार्य दिवस में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच अपने जिले के एडिशनल डिविजनल मजिस्ट्रेट के ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं।
दोस्तों रजिस्ट्रेशन करवाते समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवाने होते हैं जैसे पति पत्नी का जन्म प्रमाण पत्र
और आपको अपने आवासीय प्रमाण पत्र की कॉपी भी जमा करवानी होगी।
साथ ही कुछ जरूरी जानकारियाँ जैसे शादी की तारीख, शादी किस जगह पर हुई,
शादी के समय आपकी उम्र और आपकी वैवाहिक स्थिति आदि।
इसके अलावा आपको अपनी शादी के कुछ सबूत जैसे शादी का निमंत्रण पत्र, शादी की तस्वीरें वगैरह जमा करवानी होती हैं। अगर आप तलाकशुदा हैं तो आपको अपने तलाक की अटेस्टेड कॉपी जमा करवानी होगी।
और यदि आप विधवा या विधुर हैं तो उसके लिए आपको अपने पहले पति या पत्नी के मृत्यु प्रमाण पत्र की एक कॉपी भी जमा करवानी होगी।
तो दोस्तों उम्मीद है अब आपको समझ में आ चुका होगा कि शादी का रजिस्ट्रेशन कैसे करवाया जा सकता है और इसके क्या क्या फायदे हैं। और अगर आप इस बारे में और कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अपना सवाल हमें हमारे नंबर पर SMS कर सकते हैं।
हमारा नंबर है 9197176782 3। और दोस्तों अब वक्त हो चला है आपके पसंदीदा सेगमेंट आपकी चिट्ठी का।
नरेन आज की इनामी चिट्ठी पढ़ने से पहले मैं एक ईमेल को शामिल करना चाहती हूँ जो हमें किरतपुर बिजनौर से मिला है। इस ईमेल में लिखा है कि डियर नरेन जी एंड अंजलि जी, हेलो, माय नेम इज मसीरा खान। मुझे आपका प्रोग्राम जब चले शहर की ओर बहुत पसंद है। इस प्रोग्राम की बातें हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट होती हैं। आपके द्वारा बताई गई बातें हम और लोगों को बताते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया मसीरा जी, हमें उम्मीद है कि आप आगे भी हमारे प्रोग्राम की जानकारियाँ और लोगों तक बांटती रहेंगी।
और अब पढ़ते हैं आज की विजेता चिट्ठी। ये लिखकर भेजी है हमें कलम सिंह नेगी ने नई दिल्ली से। नरेन कलम सिंह नेगी जी लिखते हैं कि मैं ग्राम पीड़ा धनपुर जिला रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का निवासी हूं और वर्तमान में दिल्ली में रहता हूं। आपके कार्यक्रम के द्वारा मैं अपने गांव में बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए हमारे किए गए एक छोटे से प्रयास को बताना चाहता हूं। बात तकरीबन कुछ साल पहले की है जब हमारे गाँव के हाई स्कूल में 10वीं की परीक्षा में केवल 4 या 5 बच्चे ही पास हो पाते थे। स्कूल में केवल एक ही टीचर था और वो भी अक्सर छुट्टी पर रहता। परीक्षा के समय पर सभी बच्चों को पास कर दिया करता, जिससे होता ये था कि बच्चे आगे चलकर फेल हो जाते थे। सन 2003 में गांव से दिल्ली में आकर नौकरी कर रहे हम प्रवासी भाइयों ने मिलकर गांव में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए एक प्राइमरी स्कूल खोलने की योजना बनाई। सबसे पहले हमने एक संस्था बनाई, फिर उसका पंजीकरण करवाया, फिर इकट्ठा किए गए चंदे और श्रमदान से हमने एक कमरा बनाकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। आज यहाँ लगभग 80 बच्चों को 4 टीचर पढ़ा रहे हैं। नरेन, इन्होंने आखिर में एक सवाल भी लिखा है। ये कहते हैं कि अगर आप किसी ऐसी संस्था को जानते हैं जो कि विकास कार्य में मदद करती हो, तो कृपया हमें उनसे जोड़ने में हमारी मदद कीजिए।
जरूर कलम सिंह नेगी जी, जल्द ही जब चलें शहर की ओर कार्यक्रम से कोई आपसे संपर्क करेगा और आपको इस बारे में जानकारी देगा। लेकिन फिलहाल आपकी इस चिट्ठी के लिए आपको मिलता है एक ट्रैवल बैग। और दोस्तों, कलम सिंह जी की तरह आप भी ऐसा ही आकर्षक इनाम जीत सकते हैं, लेकिन इसके लिए अपने खट्टे मीठे प्रवास से जुड़े अनुभवों को चिट्ठियों के जरिए हमें भेजते रहिए।
और चिट्ठियां लिखने के लिए आप हमारा पता तो जानते ही हैं। पता है कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 121003।
और आइए दोस्तों, अब सुनते हैं आज के संदेश।
जितने कि मैं नो मैं थाने बैठ नो मैं पिताजी को संदेश देना चाहनो। मेरे पिताजी गुड़गांव में रहते ना, पिताजी को ये संदेश देना चाहनो कि आजकल बगल हुए वाला घर में एक भी बगल मनाना चाहे, घर में तुम स्वाद पकड़ पकाया वाला आर्स उर्स बनाया वाला एक तो ये रिवाज है नहीं चे, बहुत याद आनी से मैं आर्स पकड़े, मतलब खैर तुम भी ऐसा नहीं बनाया वाला, मेरी माँ खत्म हुई थे लेकिन पिताजी इतना दुख में नहीं रहा, तुम भी इतना पर शरीर ध्यान देखना, हम भी एक सब मेरे बच लोग हम ठीक से ना बच लोग पापा भी ठीक से ना राज खुश मचे नाम सब।
मेरा नाम सुरेंद्र सिंह नेगी चे, मैं न्यू बम्बई वाच में रहूँ दो, मैं होटल में काम कर दो, तो मैं उत्तरांचल में संदेश भेजना चाहूँ तो कि माँ मैं हम ठीक ठाक छूँ और राजी खुशी के साथ में छूँ, मैं बच्चे भी सब राजी खुशी के साथ में छेने। माँ सबसे पहले तुम अपना शरीर देखना और काम तो जो जिंदगी भर काम ही करना और बाकी जो कि सब ठीक ठाक छे ना और सबको मेरा प्रणाम बोल दो ना।
मेरा नाम शकुंतला प्रेम सिंह नेगी, इंदिरा नगर वागले स्टेट थाना। मैं एक औरत है, संदेश देना चाहती हूँ कि मेरे घर में मतलब बेट बुआरी छी ना और घर है जो मेरे रिश्तेदार नाती सब जो कोई भी छी ना सब थे नमस्कार और घर में के हाल होना चाहूँ और अपना बच्चों थे मतलब ठीक ठाक रखें, उनका ख्याल रखें, गौर भैंसों का ख्याल रखें, पुंगड़ा बिंगड़ा सब कुछ जो कुछ भी छ घर में और यक तो मतलब बम्बई मौसम मतलब इतना ठंड नहीं छ कम छ और मैं चाहूँ छो कि हो सकल हमार जो बेटी बुआरी छिन घर में जो मेरे नात नतीणा छिन कोई अगर बम्बई घूमने को आन चेंद होला तो ऐ जया हम बहुत खुश होला मतलब घर बटी कोई आई छ मतलब।
दोस्तों, आप भी अपना संदेश प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं
और इसके लिए आपको हमारा नंबर तो याद है ना, नंबर है 9197176782। और हाँ दोस्तों, आप लोग भी मिलजुल कर अपना एक प्रवासी क्लब तैयार कर सकते हैं और अगर आप पहले से ही ऐसे किसी क्लब के सदस्य हैं तो उसकी गतिविधियों की जानकारियाँ भी आप हमें भेज सकते हैं।
और नरेन, इसी के साथ हम अपने सहयोगियों हेवलवाणी चंबा और मंदाकिनी की आवाज भणज का भी धन्यवाद करते हैं।
और हाँ दोस्तों, हमें अपने खट्टे मीठे प्रवास से जुड़े अनुभवों के साथ चिट्ठियाँ जरूर लिखते रहिएगा और ईमेल भी करते रहिएगा।
ईमेल आईडी है shaherkior@gmail.com यानी shaherkior@gmail.com।
और पता है हमारा कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 121003।
तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है आपसे इजाजत लेने का,
लेकिन अगले हफ्ते हम फिर से हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और अंजलि को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
जब चले शहर की ओर।